मेरे अजीज नौजवान साथियों नमस्कार। आज 28 दिसंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मुकेश कुमार, आप मेहरौली दिल्ली से हैं, कैलाश नाथ आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, शैलेंद्र कुमार आप कनौता उत्तर प्रदेश से हैं, सुभाष चौधरी रतलाम मध्य प्रदेश से हैं और जटा शंकर मिश्रा आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो मुकेश, कैलाश, शैलेंद्र, सुभाष और जटाशंकर आप पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों इससे पहले कि मैं मुख्य विषय और न्यूज एनालिसिस पर आऊं, आप सबके लिए एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि कल YouTube पर एकेडमी ने मेरा एक प्रोग्राम डाला है और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप प्री 2018 के प्री एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो अब जो आपका वक्त बचा हुआ है, यानी कि कह लीजिए जनवरी से लेकर के और जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हैं, तो ये जो वक्त है इस वक्त का कैसे आप व्यवस्थित तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यूं कह लीजिए कि आपके अब जो 5 महीने का जो समय है उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है कि सब आपकी अपनी तैयारियां अपने अपने ढंग से हैं और सबको अपने अपने ढंग से ही टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि उसको सुनने के बाद आपको एक गाइडलाइन जैसी मिल जाएगी, एक रूपरेखा आप जान सकेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को क्या रूप देना चाहिए। तो मित्रों यदि आप चाहें तो YouTube पर आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज मुख्य विषय के रूप में मैं थोड़ी सी लघु बचत पर आपसे बातें करूंगा। लघु बजट जिसे हम अंग्रेजी में स्मॉल सेविंग्स कहते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले आइए मैं न्यूज एनालिसिस पर आता हूं। पहली बात तो फ्रेंड्स कि कल मैंने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया था और उस पर आप लोगों से राय मांगी थी और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि बहुत सी राय आप लोगों की मिली है और उससे भी ज्यादा आश्चर्य और खुशी की बात मेरे लिए यह है कि सारी की सारी जितने भी मुझे एडवाइस मिली या फीडबैक मिला है कह लीजिए, वो सब के सब पॉजिटिव है। यानी कि कल मैंने जो थोड़े से नए रूप में आपको डेली ऑडियो लेक्चर में बताने की कोशिश की है उसकी लोगों ने सराहना की है और सराहना से ज्यादा बड़ी बात है कि उसे उन्होंने ज्यादा उपयोगी पाया है। तो मैं आज भी उसी पैटर्न को थोड़ा बहुत लेकर के चलूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मैंने अब चूंकि इस पैटर्न की शुरुआत की है तो अब सारी चीजें इसी पैटर्न पर चलेंगी, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से न्यूज का स्वरूप होगा, यानी कि जो कुछ भी न्यूज में मुझे सुनने को और टीवी न्यूज में मुझे जानने को मिलेगा उसी तरह से मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर का फॉर्मेट तैयार करूंगा, लेकिन आप लोगों के इस फीडबैक से मुझे एक और फॉर्मेट मिल गया है कि नहीं इस तरीके से भी आपको बताया जा सकता है, बताया जाना चाहिए, यह आपकी जरूरत है। तो मित्रों आज के में मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिए हैं वो कल के न्यूज पर आधारित हैं और कल की न्यूज आपने सुने होंगे, उसमें आपको कुछ शब्द सुनने को मिले होंगे, अखबारों में भी पढ़ने को मिले होंगे, तो उनको लेकर के पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातें कर लूं फिर मैं मुख्य विषय पर आऊंगा। आपने एक न्यूज सुनी कि जो लग्जरी वाहन है उस लग्जरी वाहन पर सरकार ने उपकर लगाया है, है ना। मैं अब उसमें नहीं जाता कि कितने परसेंट लगाया, वो हमारा कंसर्न नहीं है। सरकार ने उपकर लगाया है, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मित्रों। यहां जो मैं अंतर आपको बता रहा हूं जो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और इन बहुत ही मूलभूत बातों को जब नहीं जानते तो वो हमारे लिए माइनस हो जाता है। देखिए दो तरह के कर होते हैं, मतलब मैं दूसरे कर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां जो कंफ्यूजिंग होता है, एक होता है उपकर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेस, CESS, सेस। और दूसरा होता है अधिभार, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सरचार्ज, सरचार्ज। जो सरचार्ज है वो अधिभार है। ये दोनों एक नहीं है, याद रखिए, ये दोनों एक नहीं है। आम तौर पर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। और बारीक जो अंतर है, मैं केवल उसी को यहां बताना चाहूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, जो उपकर है, जो सेस है, वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य से लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने सोचा कि नहीं, उसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, या अभी जैसे चल रहा है कि स्वच्छता के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए उसे ज्यादा धन की जरूरत है, तो वो स्वच्छता अभियान के लिए धन इकट्ठा करने की दृष्टि से वो कुछ चीजों पर सेस लगा देगी, उपकर लगा देगी, 1%, 2% जो भी है उसे लगाना होगा लगा देगी, टैक्स पर टैक्स लगा देगी। ठीक है, अब ये जो पैसा इकट्ठा होगा उपकर के तहत, तो याद रखिए, जाता तो सब कंसोलिडेटेड फंड में है, चाहे वो सरचार्ज हो या सेस हो या कोई भी टैक्स हो, तो सरकारी खजाने में ही जाता, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो। लेकिन जो उपकर है, जो सेस, याद रखिए कि उस पैसे का इस्तेमाल सरकार केवल उसी काम के लिए कर सकती है जिस उद्देश्य से उसे लगाया गया था। यानी कि अब सेस के तहत जितना भी धन इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल स्वच्छता के लिए ही किया जाएगा, या जो प्राइमरी एजुकेशन को के लिए लगाया गया है तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही किया जाएगा, उसका दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकती। जबकि जो अधिभार है, जो सरचार्ज है, उसका इस्तेमाल सरकार किसी में भी कर सकती है, उसके लिए प्रतिबंध, मतलब बंधन नहीं है कि इसका इस्तेमाल इसी में ही करेगी। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे फर्क होते हैं, बहुत ही बारीक और महीन अंतर होते हैं, लेकिन इसके बारे, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्री में इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना होती है, राइट। इसके बाद न्यूज में आपने सुना फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया है, जिसके तहत यह किया गया है कि जो गैर वन क्षेत्र है उसमें अगर बांस कोई लगा रहा है, बांस का उत्पादन हो रहा है, जिसे हम बैम्बूज कहते हैं, तो उसकी कटाई के लिए उसे सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है, उसे उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, बेचना, उसके लिए उसको फ्री कर दिया गया है। और ये इसके लिए पहले अध्यादेश लाया गया था और अब वो बकायदे उसने अब अधिनियम का रूप ले लिया है। ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अभी मैं फिलहाल उस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं कि अध्यादेश एक होता है, फिर विधेयक होता है, फिर अधिनियम होता है, इन तीनों में क्या फर्क है। ये तीनों अलग अलग होते हैं, बावजूद इसके कि कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। फ्रेंड्स, एक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शेल गैस को लेकर। न्यूज में आपने सुना कि जो शेल गैस है उसे लोकप्रिय बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। देखिए, अगर कोई मिनिस्टर भी स्टेटमेंट देते हैं तो मान करके चलिए कि वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि ये बेसिकली, ये जो शेल गैस है ये है क्या। पहले तो मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता दूं, इंग्लिश में ये होगा SHALE, शेल गैस, वह गैस जो शेल से प्राप्त होती है, राइट। अब ये शेल क्या है, जबकि अगर आप शेल का वैसे देखें, जैसे होता है ना कि धान है, तो धान चावल है, चावल के ऊपर एक कोटिंग है जिसे हम छिलका कहते हैं, तो शेल का मतलब होता है वो छिलका भी होता है, इसके शेल हटा दो तो उसका छिलका हटा दो, जिसे हम भूसी भी कहते हैं, और शेल एक तरह का पत्थर भी होता है। यहां आपकी जानकारी के लिए मैं केवल इतना बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो शेल है ये एक तरह का पत्थर होता है, चट्टान है कह लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवसादी चट्टाने। आप जानते हैं कि अवसादी चट्टाने कहां बनती हैं, जो तलछट होती है, जब जैसे पानी में खासकर ये चट्टाने बनती हैं, और पानी में बहते हुए ना जो गाद और दूसरी दुनिया भर की चीजें, हड्डियां और लकड़ी के टुकड़े, दुनिया भर की चीजें बहती हुई पानी में बहती रहती हैं, और फिर वो जगह एक जगह जाकर के इकट्ठी होती रहती हैं, तो धीरे 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 वो चट्टान का रूप ले लेती हैं। वो होता है अवसादी चट्टानें। जैसे आपने देखा बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान माना जाता है, चूना के पत्थर, सबके सब अवसादी चट्टानें मानी जाती हैं। ये जो शेल गैस है ये बेसिकली उन्हीं के बीच में होती है, उनमें ट्रैप्ड होती है। एक नेचुरल गैस है, यानी एक प्राकृतिक गैस है, उसमें ट्रैप्ड होती है, उन्हीं के अंदर होती है और उसे निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं शेल गैस। अब इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खासकर 2009 में, 2008-09 के आसपास अमेरिका में इसकी बहुत बड़ी तादाद में इसका उत्पादन होने लगा था। इसीलिए आप देखिए कि अब जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, उनके रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। 3-4 साल पहले मुझे मालूम है कि $105 प्रति बैरल इसके रेट पहुंच गए थे, प्रति बैरल या क्या है मैं उसको तो नहीं जाऊंगा कि, लेकिन $105 था, जो अब लगभग $65 के आसपास है, गिर करके $45-50 भी हो चुका है। चूंकि अब शेल गैस की चूंकि तादाद बढ़ रही है, उत्पादन हो रहा है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा है, तो इसी कारण अब जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके जो रेट हैं वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। मित्रों, मेरे पास कुछ और पॉइंट्स थे लेकिन चलिए इन पर मैं अब आज चर्चा नहीं करता हूं, वक्त नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं लघु बचत के ऊपर, है ना, स्मॉल सेविंग्स। 2017 में लघु बचत पर तो प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन सेविंग्स पर प्रश्न जरूर पूछा गया है। सेविंग्स, सेविंग्स का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में? सीधा सीधा ये नहीं है, इनडायरेक्ट में है, लेकिन मूल आधार उसका यही था। देखिए फ्रेंड्स, जो लघु बचत है भारत जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द से ही आपको पता है कि वो बचत जो आप छोटे छोटे मात्रा में करते हैं, बड़ी बचत नहीं कि 1 लाख रुपए जमा करा दिए, 5 लाख रुपए जमा करा दिए, छोटी छोटी मात्रा में, कि आपके पास 5 रुपए भी हैं तो आपने बचत कर ली, 10 रुपए भी हैं तो बचत कर ली। लेकिन ये वो बचत नहीं है जो मैं अपने घर में करता हूं, याद रखिए, ये वो बचत है जो मैं किसी इंस्टीट्यूशन में करता हूं, जैसे पोस्ट ऑफिस। मतलब लघु बचत के लिए पोस्ट ऑफिस भारत की आप यूं कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ा खजाना है। एक तो बहुत पुराना संस्थान है और इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह दूर दराज के गांव तक फैला हुआ है पोस्ट ऑफिस। बहुत बड़ा लघु बचत का मतलब एक सबसे बड़ा मतलब क्या नेटवर्क है भारत में। आपको थोड़ा सा भी पैसा जमा होता जाइए वहां, इकट्ठा हुआ जमा बचत किया आपने वहां जमा करा करके आ जाइए, फिर जाइए फिर जमा करा करके आ जाइए, कितनी भी बार वहां जाइए आप जमा कराइए। इससे होता क्या है कि ये जो छोटी छोटी रकम है, पहली बात तो ये कि फैमिली का प्रोटेक्शन हो गया कि उसके पास पूंजी जमा हो गई तो फैमिली को फायदा हो गया। दूसरा ये कि छोटी छोटी जो रकम जमा हो रही है अल्टीमेटली वो हमारी इकोनॉमी के मेन पाइपलाइन में आती है, सरकार को पैसा मिलता है या इंडस्ट्री को मिलता है, इकोनॉमी में आने के बाद उस पैसे की उत्पादन क्षमता शुरू हो जाती है, बढ़ने लगती है। अदरवाइज मेरे पास अगर वो पैसा पड़ा हुआ है तो आप सोचिए कि मैं मेरे किस काम का है, बस एक आत्मिक संतोष मिल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है। जबकि उसी को जब मैं बैंक में रख देता हूं, पोस्ट ऑफिस में रख देता हूं, सर्टिफिकेट्स खरीद लेता हूं, तो उन पर मुझे ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है। न्यूज में आपने सुना कि सरकार ने ब्याज की दर में थोड़ी सी कमी की है, जो लघु बचत ब्याज दर है उनमें थोड़ी सी कमी की है, हालांकि बहुत थोड़ी सी 0.2% की कमी की है। अब ये जो लघु बचत के तहत जो हम जमा करते हैं, देखिए वो केवल पोस्ट ऑफिस में ही जमा किया गया पैसा नहीं, जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जिसे हम NSC कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा जमा होता है, किसान विकास पत्र होते हैं जिसे KVP कहते हैं, PPF है, तो ये सारी जो योजनाएं हैं ये बेसिकली लघु बचत के तहत आती हैं, छोटी छोटी बचत है। सरकार ने इस पर ब्याज की दर थोड़ी सी कम कर दी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जब अगर सरकार ब्याज की दर कम कर रही है तो ब्याज की दर दो तरह से कम होगी। एक तो यह है कि मैंने जो पैसा जमा किया है उस पर मुझे कम ब्याज मिलेगा, दूसरा है कि बैंक से मैंने जो ऋण उधार लिया है उस पर मुझे कम ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मुझे कम ब्याज देना पड़ेगा तो मैं बैंक से ज्यादा कर्ज लूंगा, है ना, और उसका उपयोग करूंगा, तो उससे आर्थिक वृद्धि होती है। लेकिन अगर मेरी बचत पर मुझे बैंक या इस तरह की जो लघु योजनाओं में जमा करूंगा कम ब्याज मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि मैं जमा करने के लिए प्रेरित नहीं होऊंगा। जमा करने के लिए तो मैं प्रेरित तब होऊंगा ना, मुझे अट्रैक्शन इस बात का हो कि यार यहां खूब ब्याज मिलता है। अगर मान लीजिए कि लघु बचत में मुझे कम ब्याज मिल रहा है, दूसरे माध्यमों में मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो बट नेचुरल है कि मैं दूसरे माध्यमों में पैसा जमा करूंगा, फिर यहां पैसा कम हो जाएगा। तो अक्सर होता क्या है कि सरकार अगर लघु बचत में ब्याज की दर घटाती है तो उसका एडवर्स इंपैक्ट लोगों पर पड़ता है, फिर वो बचत करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। जबकि भारत को सेविंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मित्रों, लघु बचत के बारे में मैं आप सबसे इतनी ही बात करने की फिलहाल स्थिति में हूं, लेकिन यह मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेविंग ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लघु बचत तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि जो जन धन योजना की जो पूरी की पूरी जो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, इतने खाते खोले गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस लघु बचत योजना को मजबूत बनाने वाले हैं कि अब हमारे गांव के किसान हों, महिलाएं हों, अगर थोड़ा सा भी पैसा बचाती हैं तो बैंक में जाकर के वो अपना पैसा जमा कर सके। तो जो लघु बचत है, इनके बारे में आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने जरूरत के अनुसार उसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अमित कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश, विवेक धवन नई दिल्ली, प्रगति वाजपेयी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ज्योति राजौरिया, प्रभात यादव शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश, राघवेंद्र मिश्रा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सुभाष कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार, मनीष तिवारी गया बिहार, रामराज मीना, मंजूषा कश्यप झारखंड, शशिकला चौहान मुंबई, मनिंद्र शाही, धनराज यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, संजय सिंह और सागर प्रजापति। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।